इमेजिन कीजिए 7 साल, 7 साल तक लगातार दिन रात मेहनत करना।
हाँ, और वो भी सिर्फ उस इंसान से शादी करने के लिए जिससे आप बे इंतहा प्यार करते हैं।
बिल्कुल, पे शादी का दिन आता है, खूब जश्न मनाया जाता है, लेकिन अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण तंबू में आती है तो आप देखते हैं कि आपके बगल में वो नहीं है जिससे आपने शादी की थी,
बल्कि उसकी बड़ी बहन है।
हाँ, मतलब ये सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे हम किसी मॉडर्न टीवी सोप ओपेरा का सस्पेंस सीन डिस्कस कर रहे हो।
बिल्कुल,
लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है।
वही तो,
ये असल में उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब के पन्नों में दर्ज एक बहुत ही, मतलब बहुत ही जटिल ऐतिहासिक घटना है।
और यहीं पर ना प्राचीन ग्रंथों के बारे में हमारी सारी धारणाएं टूट जाती हैं।
कैसे, थोड़ा समझाइए।
देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये ग्रंथ केवल पवित्र और सीधे साधे नैतिक सबक देते हैं, जहां हर कोई एक आदर्श जीवन जी रहा है ना?
हाँ, एक परफेक्ट लाइफ।
लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट वैनॉय के ओल्ड टेस्टमेंट इतिहास की व्याख्यान, जिन पर आज के इस गहन विश्लेषण की नींव रखी गई है, हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं।
बिल्कुल।
उत्पत्ति के 29 से 32 अध्यायों में हम याकूब की कहानी देखते हैं, जो पूरी तरह से पारिवारिक उथल पुथल, धोखेबाजी और सत्ता के खेल से भरी हुई है।
तो आज की इस चर्चा का मकसद केवल इस पुरानी कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हारान में याकूब के बिताए गए वो साल, उसकी विवादास्पद शादियां और बाद में पनियल में नदी किनारे हुआ मुरहसमी संघर्ष, ये सब कैसे एक बहुत बड़े ईश्वरीय उद्देश्य का हिस्सा बनते हैं।
बिल्कुल, कैसे मानवीय कमजोरियां और इंसान की वो जोड़ तोड़ वाली फितरत अंततः एक ऐतिहासिक योजना में बदल जाती है।
तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस ड्रामे की शुरुआत हुई। याकूब अपने मामा लबान के घर पहुंचता है, राहिल से प्यार करता है और फिर वो बैट एंड स्विच वाला भयानक धोखा होता है।
हाँ, वो बैट एंड स्विच, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक व्यापारिक या बिजनेस वाला धोखा नहीं था।
तो क्या था ये?
इसने एक बहुत ही भयानक पारिवारिक संकट को जन्म दिया। लाबान बहाना बनाता है कि उनके यहाँ छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले करने का रिवाज नहीं है,
जो कि एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना था।
बिल्कुल, असली बात तो ये थी कि वो याकूब जैसे मेहनती इंसान को अगले 7 साल के लिए और बांधना चाहता था।
मतलब एक और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट।
हाँ, याकूब को राहेल से शादी करने के लिए ये शर्त माननी ही पड़ी, और नतीजा ये हुआ कि उसने एक ही सप्ताह के भीतर 2 सगी बहनों से शादी कर ली।
बाप रे, एक ही हफ्ते में?
डॉक्टर वेनॉय इस बात पर बहुत जोर देती हैं। मेरा मतलब है, वो स्पष्ट करते हैं कि ये स्थिति उस मूल आदर्श के बिल्कुल विपरीत थी जो उत्पत्ति के शुरुआती अध्यायों में स्थापित किया गया था।
आप एक विवार यानी मोनोगैमी की बात कर रही हैं ना?
हाँ, मोनोगैमी के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था ये।
यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी तो है। जब पूरी सृष्टि का डिजाइन ही एक साथी के लिए था, तो 2 सगी बहनों का एक ही आदमी से शादी करना, मतलब ये तो परिवार के भीतर एक भयानक इमोशनल युद्ध शुरू कर देगा।
और वो भी ऐसी 2 बहनें जो एक ही घर में साथ साथ पली बड़ी थी। ये सिर्फ बहुविवाह नहीं था।
हाँ, ये एक राइवलरी थी।
बिल्कुल, इसी प्रतिस्पर्धा और कड़वाहट को देखते हुए ही तो बाद में मूसा की व्यवस्था या मज़ेक लॉ में कड़े नियम बनाए गए।
अच्छा, वहां क्या नियम थे?
अगर हम लेव्यस्था यानी लेविटिकस 18:18 को देखें तो वहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता।
ओहो, मतलब उन्होंने इसे बकायदा बैन कर दिया था।
उस कानून में बहन को एक प्रतिद्वंदी या सौतन के रूप में परिभाषित किया गया है।
वाओ।
यद्यपि याकूब की यह घटना उस कानून के आने से सदियों पहले की है, लेकिन यह कहानी खुद ब खुद ये साबित करती है कि वो कानून क्यों जरूरी था। इसका परिणाम केवल ईर्ष्या और विनाश ही था।
और ये ईर्ष्या बहुत जल्द ही एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल गई, जहां बच्चों का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया गया।
बिल्कुल,
ये हिस्सा मुझे सच में बहुत हैरान करता है कि कैसे दोनों बहनों ने अपने बच्चों के नामों को, मतलब एक दूसरे पर ताने मारने या अपना दर्द बयान करने का जरिया बना लिया।
हाँ, क्योंकि याकूब राहेल से प्यार करता था, इसलिए लिया खुद को पूरी तरह से ठुकराया हुआ महसूस करती थी।
सही बात है, जब लिया ने अपने पहले बेटे रूबेन को जन्म दिया तो उसका मानना था कि अब उसका पति उससे प्रेम करेगा। ये नाम उसकी कितनी गहरी हताशा को दिखाता है।
और लिया की ये हताशा एक एक करके 4 बेटों रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा के जन्म तक चलती है।
और उधर राहेल का क्या हाल था?
राहेल, जो याकूब की चहेती थी, वो निस्संतान होने के कारण ईर्ष्या से एकदम जल रही थी। उसका यह कहना कि मुझे बच्चे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है।
एक तरह से पैनिक में थी वो।
बिल्कुल। फिर वो एक ऐसा कदम उठाती है जो उस समय के कल्चर में तो आम था लेकिन नैतिक रूप से बहुत जटिल था। वो अपनी दासी बिल्हा को याकूब को सौंप देती है।
ठीक वैसे ही जैसे इब्राहिम की पत्नी सारा ने किया था, है ना?
एकदम सही तुलना है। राहेल दासी के जरिए बच्चे पैदा करवा कर खुद को विजयी मानती है।
जब बिल्ला से दान और नफ्ताली पैदा होते हैं तो राहेल खुलेआम कहती है कि उसने अपनी बहन के साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है और जीत हासिल की है।
और इसके जवाब में लिया शांत नहीं बैठती, वो भी अपनी दासी झिल्पा को सौंप देती है।
मतलब ये एक ऐसी अस्वस्थ दौड़ बन गई थी जहां परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, सब एक दूसरे से आगे निकलने में लगे थे।
हाँ, लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तब आता है जब इस पूरी प्रतिस्पर्धा में मैंड्रेक्स की एंट्री होती है।
हाँ, मैंड्रेक्स, लिया का बड़ा बेटा रूबिन खेत से मैंड्रेक्स लेकर आता है और प्राचीन मध्य पूर्व में इस पौधे को प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला एक जादुई पौधा माना जाता था।
देखिए, राहेल किसी भी कीमत पर उन मैंड्रेक्स को पाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद यही उसकी निस्संतान होने की समस्या का मतलब आखिरी समाधान है,
एक शॉर्टकट की तरह।
हाँ, और इसके लिए वो जो सौदा करती है वो मानवीय जोड़ तोड़ की पराकाष्ठा है। वो लिया से कहती है कि अगर वो मैंड्रेक्स दे दे तो उस रात याकूब के साथ रहने का अधिकार लिया का होगा।
और जब याकूब आता है तो लिया उसे सीधे शब्दों में कहती है कि उसने उसे किराए पर लिया है। सोचिए याकूब की क्या स्थिति रही होगी।
वो बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा था।
यहाँ मैं राहेल की इस जादुई पौधे वाली रणनीति को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा।
हाँ, बताइए।
राहेल जादुई पौधे का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, लेकिन ये रणनीति पूरी तरह से उल्टी पड़ जाती है।
बिल्कुल उल्टी।
इस रात के परिणाम स्वरूप राहेल गर्भवती नहीं होती बल्कि लिया फिर से गर्भवती हो जाती है और अपने पांचवें बेटे को जन्म देती है। ये देखना कितना दिलचस्प है कि जब इंसान परिस्थितियों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो नतीजे अक्सर उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत होते हैं।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। राहेल सोच रही थी कि मैंड्रिक्स उसे गर्भवती कर देंगे और लिया को याकूब के साथ रात बिताने देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन पासा ही पलट गया।
हाँ,
परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। ये दिखाता है कि जब इंसान ईश्वरीय योजनाओं में खुद को सर्वोपरि मानकर शॉर्टकट अपनाता है ना, तो चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं।
सही कहा।
राहेल को अपना पहला बेटा यूसुफ तब जाकर मिलता है जब वो सारे हथकंडे छोड़ चुकी होती है और अंततः ईश्वर उस पर कृपा करता है।
इस सारे पारिवारिक कलेश के बीच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक नींव रखी जा रही थी। अब्राहम से किए गए वादे के अनुसार इसराइल की 12 जनजातियों का निर्माण हो रहा था।
बिल्कुल। और यह मुझे एक चीज बहुत दिलचस्प लगती है, लिया जिसे याकूब पसंद नहीं करता था उसी के वंश से, विशेष रूप से यहूदा के वंश से आगे चलकर दाऊद का महान घराना आया।
ये बहुत बड़ी बात है ऐतिहासिक दृष्टि से।
लेकिन अगर हम इन 12 जनजातियों के गणित पर नजर डालें तो ये थोड़ा उलझावा लगता है।
हाँ, पहली बार देखने में ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। डॉक्टर वेनॉय के व्याख्यान इस गणितीय उलझन को बहुत स्पष्ट तरीके से सुलझाते हैं।
अच्छा, कैसे?
देखिए, शुरुआत में याकूब के 12 बेटे थे लेकिन बाद में याकूब यूसुफ के 2 बेटों एफ्रेम और मनश्शे को अपने बेटों के रूप में अपना लेता है।
तो अगर याकूब के 12 बेटे थे और यूसुफ की जगह उसके 2 बेटों ने ले ली तो तकनीकी रूप से कुल 13 हो गए, है ना?
हाँ, गिनती के हिसाब से 13।
फिर ये 12 जनजातियों का सटीक आंकड़ा कैसे बना रहता है, विशेष रूप से जब कनान देश में जमीन के बंटवारे का समय आता है?
इसका जवाब लेवी की जनजाति के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व में छिपा है। लेवी को जमीन का कोई एक निश्चित भौगोलिक हिस्सा नहीं दिया गया था।
तो जमीन क्यों नहीं मिली उन्हें?
इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण था। लेवी की जनजाति को पुरोहितों यानी प्रीस्ट्स के रूप में चुना गया था। उनकी विरासत कोई जमीन नहीं बल्कि खुद ईश्वर थे।
ओहो, मतलब उनका रोल अलग था।
हाँ, इसका मतलब ये था कि वे पूरे देश में 48 लेवीय नगरों में फैले हुए थे। उनका काम लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना था और बाकी जनजातियां उन्हें अपनी उपज का 10वां हिस्सा देती थीं,
जिसे टाइथ कहते हैं।
बिल्कुल। इसलिए जब जमीन बांटने की बारी आई तो लेवी सूची से बाहर हो गए और यूसुफ के 2 बेटों ने उस अंतर को भर दिया, जिससे जमीन पाने वाली जनजातियों की संख्या 12 ही रही।
अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था थी, सब एकदम फिट बैठ गया।
हाँ, लेकिन यूसुफ के इन दो बेटों को अपनाते समय एक और घटना होती है जो एक बहुत बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती है।
कौन सा पैटर्न?
जब याकूब बूढ़ा हो जाता है और एफ्राइम और मनश्शे को आशीर्वाद देने का समय आता है, तो यूसुफ अपने बड़े बेटे मनश्शे को याकूब के दाहिने हाथ की ओर रखता है,
जो कि सामान्य परंपरा थी।
लेकिन याकूब जानबूझकर अपने हाथ क्रॉस कर लेता है और छोटे बेटे एफ्राइम पर अपना दाहिना हाथ रखता है।
हाथ क्रॉस कर लेता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट का एक बहुत ही गहरा विषय है, छोटे को बड़े पर तरजीह देना।
बिल्कुल, अगर हम पूरी वंशावली को देखें तो इस्माइल बड़ा था लेकिन इसहाक को चुना गया।
ईसाव बड़ा था लेकिन याकूब को चुना गया।
रूबेन बड़ा था लेकिन यहूदा को तरजीह मिली।
और यहाँ मनश्शे बड़ा था लेकिन एफ्रेम को मुख्य आशीर्वाद मिला।
डॉक्टर वेनॉय इसे ईश्वरीय अनुग्रह की स्वतंत्रता के रूप में मानती हैं। यह दिखाता है कि ईश्वर की योजनाएं इंसानों के बनाए हुए सामाजिक नियमों या प्रथम जन्म के अधिकार की मोहताज नहीं है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि मानवीय परंपराएं ईश्वरीय चुनाव को सीमित नहीं कर सकती। खैर, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हारान में 20 साल का एक लंबा अरसा बीत चुका था।
हाँ, बहुत लंबा समय।
याकूब ने इन 20 वर्षों में अपनी मेहनत और कुछ चालाकी से बहुत संपत्ति, जानवर और नौकर चाकर इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अब समय आ गया था वहां से निकलने का।
और ये कोई खुशी खुशी वाली विदाई नहीं थी, ये रातों रात किया गया एक गुप्त पलायन था।
याकूब अच्छी तरह जानता था कि लाबान उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वो लाबान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने पूरे परिवार और संपत्ति के साथ चुपचाप निकल जाता है।
लेकिन इस पलायन में रेहेल एक ऐसा कदम उठाती है जो उन सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था।
उसने क्या किया?
वो अपने पिता के घर से कुछ मूर्तियां चुरा लेती है जिन्हें टेराफिम कहा जाता है।
ये घटना तो बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। लाबान को पता चलता है, वो उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़ भी लेता है। फिर वो चोरी का आरोप लगाता है
और याकूब, जो खुद इस चोरी से अनजान था, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में कह देता है कि जिसके पास भी मूर्तियां मिलेंगी वो मार डाला जाएगा।
कितनी बड़ी गलती! राहेल ने वे मूर्तियां ऊंट की काठे में छिपा दी थीं और वो उनके ऊपर बैठ गई थीं।
हाँ, और जब लाबान वहां आता है तो वो मासिक धर्म या पीरियड का बहाना बनाकर उठने से मना कर देती है।
मतलब लाबान ठीक मूर्तियों के सामने खड़ा है लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन यह एक बड़ा सवाल उठता है, राहेल ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? क्या यह सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास था?
देखिए, काफी समय तक लोग यही मानते थे कि राहेल ने उन्हें सुरक्षा या पूजा के लिए चुराया था, लेकिन आधुनिक पुरातत्व विज्ञान, विशेष रूप से नुजी दस्तावेजों की खोज ने इस पर एक नई रोशनी डाली है।
नुजी दस्तावेज? ये क्या है?
ये दस्तावेज उसी काल और क्षेत्र के कानूनी और सामाजिक नियमों को दर्शाते हैं। इनके अनुसार टेराफीम केवल पूजा की मूर्तियां नहीं थीं, वे संपत्ति के उत्तराधिकार और कानूनी अधिकारों का प्रतीक थीं।
इसका मतलब है कि अगर किसी के पास वे मूर्तियां हैं तो वो परिवार की मुख्य संपत्ति पर कानूनी दावा कर सकता है।
बिल्कुल, लाबान का डर केवल धार्मिक नहीं था, वो आर्थिक और कानूनी भी था।
ओ, अब समझ आया।
लाबान को लग रहा था कि याकूब बाद में लौटकर इन मूर्तियों के आधार पर उसकी सारी संपत्ति पर दावा ठोक सकता है।
तो रहेल का इन मूर्तियों को चुराना संभवतः अपने पति के भविष्य के वित्तीय अधिकारों को सुरक्षित करने की एक चालाकी थी।
शायद, लेकिन अंततः जब लाबान कुछ नहीं ढूंढ पाता तो वे दोनों एक समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं। वे पत्थरों का एक ढेर बनाते हैं जिसे वे मिस्पाह और गलेद कहते हैं।
मिस्पाह का यह हिस्सा मुझे बहुत हैरान करता है, क्योंकि आज के समय में पॉप कल्चर में इसका मतलब बिल्कुल ही बदल गया है।
हाँ, आजकल लोग इसका कुछ और ही मतलब निकालते हैं।
आज लोग मिस्पाह को हार के पेंडेंट पर उकेरती है, जिसका मतलब होता है कि जब हम एक दूसरे से दूर हों तो ईश्वर हम दोनों के बीच नजर रखे। ये एक बहुत ही प्यार भरा रोमांटिक विदाई संदेश लगता है।
यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है।
अच्छा,
प्राचीन संदर्भ में मिस्पाह कोई स्नेहपूर्ण विदाई नहीं थी। डॉक्टर वेनॉय इसे बहुत स्पष्ट करते हैं, यह एक सख्त कानूनी संधि थी, एक श्राप का फॉर्मूला।
अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में समझें तो ये किसी कोल्ड वॉर के डीमिलिटराइज जोन जैसा था, है ना?
एकदम सही एनालॉजी है।
पत्थरों का वो ढेर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा थी। लाबान का कहना ये नहीं था कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, वो मूल रूप से ये कह रहा था कि देख भाई, हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते।
हाँ, बिल्कुल यही भावना थी।
अगर तुमने पत्थरों की इस सीमा को पार करके मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो याद रखना, ईश्वर एक स्नाइपर की तरह बॉर्डर पर नजर रखे हुए हैं और वो तुम्हें सजा देगा। ये एक धमकी थी, प्यार का संदेश नहीं।
यह बहुत ही सटीक तुलना है। लाबान के साथ एक तनावपूर्ण शांति स्थापित करने के बाद याकूब आगे बढ़ता है, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता।
क्या होता है फिर?
हैरान से निकलने की राहत बहुत ही अल्पकालिक थी, क्योंकि अब उसके सामने वो खतरा खड़ा हुआ था जिससे बचकर वो 20 साल पहले भागा था, उसका भाई एसाव।
वही एसाव जिससे याकूब ने पहलौठे का अधिकार और पिता का आशीर्वाद धोखे से छीन लिया था। याकूब को खबर मिलती है कि एसाव उससे मिलने आ रहा है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ 400 आदमी है।
और 400 आदमी कोई स्वागत समिति तो नहीं होते?
बिल्कुल नहीं, ये एक छोटी सेना थी। ये सुनकर याकूब की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू करता है।
वो क्या करता है?
वो अपने डेरे को दो हिस्सों में बांट देता है, जिसे वो महनाइम कहता है। उसकी सोच ये थी कि अगर एसाव एक हिस्से पर हमला करके उसे नष्ट भी कर दे तो कम से कम दूसरा हिस्सा बचकर भाग निकलेगा।
एक टिपिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी।
हाँ, इसके साथ ही वो जानवरों का एक विशाल झुंड तैयार करता है और उन्हें एक के बाद एक लहरों के रूप में एसाव की ओर भेजता है। मतलब ये एक मास्टर क्लास पीआर क्राइसिस मैनेजमेंट रणनीति जैसी लगती है।
पीआर क्राइसिस मैनेजमेंट?
हाँ, जहां आप विरोधी को इतने उपहार भेजते हैं कि मुख्य मुलाकात से पहले ही उसका सारा गुस्सा पिघल जाए।
पीआर मैनेजमेंट कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि दांव पर केवल उसकी इमेज या प्रतिष्ठा नहीं थी।
तो क्या था?
यहाँ उसकी और उसके पूरे परिवार की जान दांव पर थी। एसाफ कोई नाराज क्लाइंट नहीं था जिसे कुछ डिस्काउंट देकर शांत किया जा सके।
वो तो जान लेने पर उतारू था।
बिल्कुल, याकूब एक मनोवैज्ञानिक रणनीति खेल रहा था। हर एक उपहार की लहर एसाव के 20 साल पुराने गुस्से की एक परत को कम करने के लिए डिजाइन की गई थी।
बहुत ही सोची समझी चाल थी।
लेकिन इन मानवीय रणनीतियों के साथ साथ याकूब एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। वो ईश्वर से एक बहुत ही गहरी और ईमानदार प्रार्थना करता है। वो ईश्वर को उसके वादों की याद दिलाता है और स्वीकार करता है कि वो किसी भी कृपा के योग्य नहीं है।
और ये प्रार्थना हमें कहानी के सबसे चरम बिंदु तक ले जाती है। याकूब ने अपने सारे उपहार भेज दिए हैं, उसने अपने पूरे परिवार को यब्बोक नदी के पार सुरक्षित भेज दिया है।
सब कुछ नदी के उस पार।
हाँ, और अब रात के अंधेरे में वो बिल्कुल अकेला रह गया है। उसकी सारी चालाकियां, सारी रणनीतियां नदी के उस पार जा चुकी हैं, और यहीं पनियल में उसका सामना एक रहस्यमय व्यक्ति से होता है।
वो रात भर चलने वाली कुश्ती।
बिल्कुल, रात भर याकूब इस रहस्यमय व्यक्ति से कुश्ती लड़ता है।
बाद में उसे एहसास होता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर या परमेश्वर का दूत था। ये संघर्ष इतना भयंकर था कि उस व्यक्ति ने केवल याकूब की जान को छुआ और उसकी जांघ की नस खिसक गई।
बाप रे।
वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। फिर भी याकूब ने उसे नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
इस घटना को पढ़ते हुए एक बड़ा तार्किक सवाल मन में आता है। हम अक्सर इस कहानी को ऐसे पेश करते हैं जैसे याकूब ने अपनी ताकत से ईश्वर को कुश्ती में हरा दिया हो।
हाँ, अक्सर ऐसा ही नैरेटिव बनता है।
लेकिन अगर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर था तो एक इंसान रात भर कैसे टिका रह सकता है और जीत कैसे सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं होती।
आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसका जवाब हमें केवल कुश्ती के दृश्य में नहीं बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट की एक और किताब होशिया अध्याय 12 में मिलता है।
अच्छा, उसमें क्या लिखा है?
होशिया इस घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि याकूब रोया और उसने कृपा की भीख मांगी। उसकी जीत उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं थी।
तो फिर किसमें थी?
लियोपोल्ड ऑस्टिगर्स जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के बड़े विद्वान इसका बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हैं। वो समझाते हैं कि यह वो क्षण था जब याकूब का सारा अहंकार टूट गया था।
यानी असली जीत ईश्वर को शारीरिक रूप से हराने में नहीं थी।
बिल्कुल नहीं,
असली जीत ये स्वीकार करने में थी कि वो इंसान के रूप में पूरी तरह से हार चुका है।
एकदम सही कहा आपने।
याकूब ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को धोखा देकर अपनी चालाकी से सब कुछ हासिल किया था, लेकिन उस रात एक अपाहिज हालत में उसे ये समझ आ गया कि वो अपनी चालाकी से वादे की जमीन या ईश्वरीय सुरक्षा नहीं पा सकता। उसे पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर होना पड़ेगा।
बिल्कुल, और आत्मसमर्पण के इसी क्षण ने उसकी पूरी पहचान बदल दी।
कैसे?
उस रात ईश्वर ने उसका नाम याकूब, जिसका अर्थ है धोखेबाज या एड़ी पकड़ने वाला, से बदलकर इज़राइल कर दिया। इज़राइल का अर्थ है वह जो ईश्वर से संघर्ष करता है।
नाम ही बदल दिया?
यह केवल एक नया नाम नहीं था, यह एक नए चरित्र का जन्म था। हारान में जो व्यक्ति चालाकी और धोखे से भरा था, वह पनियल की नदी के किनारे एक टूटा हुआ लेकिन पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति बन गया था।
ये बहुत ही डीप है।
ये डॉक्टर वैनॉय के व्याख्यान का सबसे मुख्य निष्कर्ष है कि कैसे ईश्वर मानवीय कमजोरियों के बीच काम करता है और अंततः व्यक्ति को अपने उद्देश्य के लिए तैयार करता है।
इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि याकूब की कहानी केवल कुछ प्राचीन घटनाओं का संकलन नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
ये मानव स्वभाव, उसकी ईर्ष्या, उसके डर और चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की उसकी जिद की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर है। हमने देखा कि कैसे 12 जनजातियों की नींव एक बहुत ही उथल पुथल भरे परिवार से पड़ी
और कैसे एक धोखेबाज इंसान को ईश्वरीय वादों का वाहक बनने के लिए खुद टूटना पड़ा। ये कहानी हमें दिखाती है कि ईश्वर की योजनाएं मानवीय गलतियों और जोड़ तोड़ के बावजूद कैसे पूरी होती हैं।
सच में
याकूब का परिवर्तन एक रात में नहीं हुआ था, इसमें दशकों का संघर्ष, धोखे और अंततः आत्मसमर्पण शामिल था।
ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है।
कैसा सवाल?
उस रात कुश्ती के बाद याकूब का नाम और चरित्र तो बदल गया, लेकिन उसकी जांग की नस हमेशा के लिए खिसक गई। वो पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलता रहा।
हाँ, एक स्थायी निशान।
ये सोचने वाली बात है कि जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक या व्यक्तिगत बदलाव अक्सर कोई ना कोई स्थायी घाव या कमजोरी पीछे छोड़ जाते हैं।
बिल्कुल।
क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत और हमारे चरित्र का सबसे गहरा निर्माण वास्तव में हमारे भीतर मौजूद हमारे सबसे बड़े संघर्षों के निशान लेकर ही आते हों?